जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दना जय जय त्रिभुवन करे जर चरण वंदना त्रिभुवन करे जर जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दना जय जय जगन्नाथ नीलाचली शंख चक्र गदा पद्म धारा नीलाचली शंख चक्र नदी नागरी दंड कमन डालुकार नदी नागरी दंड जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दना जय जय केह बलि पुराबेते रावणव दीना केह बलि पुराबेते गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला गोलोकेर वैभव लीला जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दना जय जय शिराधार भावे बे गोरा अब आरो शिराधार भावे बे हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौर वासुदेव घोष कबले कोरी जोड़ हात वासुदेव घोष बोले जेई गौर सेई कृष्णा सेई जगन्नाथ जेई गौर सेई कृष्णा जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दना जय जय जगन्नाथ त्रिभुवन करे जर चरण वंदन त्रिभुवन करे जर जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दना जय जय जगन्नाथ
जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। जय नित्रिलाद ब्रह्मचर स्त्रोत्र सदा श्री श्रीमदे शिवकंत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय नित्रिलाद्रह्मचर स्त्रोत्र ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। नानाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समवेता भक्तवृंद की जय। दधीचूड़ा महोत्सव की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर विमानंदे नाम श्रेष्ठ मनुमपे सचिपुत्र मात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजा मुरुपुरी माथुरीगोष्ठवाटी राधा कुंडग्रीवर मोहो राधिका माधवासं प्राप्त जैसपृपया श्रीगुरु तं नतोऽस्मि वाछाकुलपतिरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्रादिकमादितरङ्ग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दां आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आज दधीचूड़ा महोत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने कृष्ण लीला में मंजरी रूप में नित्य सिद्ध मंजर रूप में विराजित थे और यही इस समय महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए जब कृष्ण गौर रूप में आए तो उसी समय उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी रूप में इस जगत में विख्यात हुए। उनका कृष्णलीला में नाम था रति मंजरी व तुलसी मंजरी, जो राधा रानी का सेवा करते थे। सखी लीला से मंजरी लीला में ज्यादा उपादेय है। जिस जायगा में सखी लोग भी प्रविष्ट नहीं हो पाता है उस जायगा में मंजरी का अवाद कोई रुकावट नहीं होता है। और गौड़ीय साधन प्रणाली जो है जिस धारा में हम विराजित तो है उस साधन प्रणाली में मंजरी साधन सर्वश्रेष्ठ होता है और यही हम लोग का एकमात्र काम्य होना चाहिए। यही मंजरी साधन अगर करना है तो राय रामानंद संवाद जो है महाप्रभु के साथ उनको अच्छी तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर के मंजरी साधना क्या वस्तु है समझ में आ सकता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हिरण्य गोवर्धन का घर में आविर्भूत हुए थे उस समय उनका पिताजी का 20 लाख स्वर्ण मुद्रा का इनकम था, 12 लाख कर देने के बाद 8 लाख उद्वृत्त रहता था। नवद्वीप में जितना सारे ब्राह्मण लोग थे सबको भरण पोषण हिरण्य और गोवर्धन दोनों करते थे। जितना सब ब्राह्मण अध्यापक थे सबका किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है हिरण्य गोवर्धन का हाथ कर्ण जैसे खुला हुआ है, कोई लौट कर नहीं जाते थे। फिर महाप्रभु इनको बोला हाय वैष्णव प्राय, वैष्णव नहीं है लेकिन वैष्णव जैसा ही है। तो इस संबंध हम लोग वैष्णव वैष्णव प्राय वैष्णव आभास और वैष्णव बहुत सारे वैष्णव का विभेद मिलता है। इनको वैष्णव आभास ना करके वैष्णव प्राय कहा गया है। आज दास गोस्वामी के बारे में महाप्रभु उक्ति है, तुम्हार बाप जठा है विषय विष्टा गौर तेर क्रिया, इतना विषय है और इतना ब्राह्मण वैष्णव में दान करता है। बोलता है तुम्हारे बाप और जेठा जो है विषय विष्टा गौरत का क्रिया है, मतलब कृमि। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि धन कमाने के लिए उस प्रकार ज्यादा अपने आप को नियोजित तो नहीं करना चाहिए। अगर हम उस धन को कृष्ण भवनामृतों में व कृष्ण भक्त का सेवा में व वैष्णव सेवा में अगर हम देते भी है, फिर भी हम वैष्णव प्राय होता है विषय विष्टा का क्रिया बनते। किस प्रकार? क्योंकि हम धन का कमाने के चक्कर में हम ज्यादा अपने आप को नियोजित कर रहे हैं। ये महाप्रभु का उपदेश है। तीन चैतन्य चरितामृत में श्लोक लिखते हैं, कृपा गुणेर्ज कुगृहांद कूपाद उद्धृत भंग्या रघुनाथ दासम नश्य स्वरूपे विध अंतरंगम श्री कृष्ण चैतन्य मुमुंग प्रपद्ये। जिन्होंने अपना कृपारूप रज्जु के द्वारा गृह अंधरूप कूप से एक छलना करके रघुनाथ दास गोस्वामी को उद्धार किए थे और उद्धार करने के बाद स्वरूप दामोदर का हाथ में अर्पण किए थे और उनको अपना अंतरंग भक्त रूप में स्वीकार किए थे, उन श्री कृष्ण चैतन्य चरण में प्रणाम करता हूँ। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु को प्रणाम किया, अंतरंग भक्त। हम लोग पंचतत्व का प्रणाम करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारं भक्ताक्यं नमामि भक्त शक्तिकम। ये भक्ताक्य और भक्त शक्ति दोनों में अंतर है। भक्ताक्य बोले श्रीवास पंडित का अनुगत तो जितना सारे वैष्णव है सब भक्ताक्य है, और स्वरूप दामोदर राय रामानंद गदाधर पंडित ये सब का अनुगत तो भाव में जो भजन करता है भक्त शक्ति होता है। ये अंतरंग भक्त और भक्ताक्य इसका भक्ति सिद्धांत ठाकुर भाष्य में अनुभाष्य में लिखे हैं। तो आज हम लोग का आलोच्य विषय है दधीचिड़ा महोत्सव। इसका उद्देश्य क्या है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपना अनुभाष्य में लिखते हैं जो विषयी व्यक्ति का जो विषय है उस विषय को वैष्णव सेवा में नियोजित जब तक नहीं करता है तब तक उसको वित्त साष्ट रूप जो अनर्थ वो काटता नहीं है। तो वित्त साष्ट रूप जो अनर्थ है उस अनर्थ को दूरीभूत करने के लिए नित्यानंद प्रभु का रघुनाथ दास से दही चिड़ा खाने का इच्छा। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर संसार से वैराग्य लेना चाहता है तो उनका कर्तव्य क्या बनता है? वैष्णव का सेवा किया करे। तो जो अनर्थ है विषय विष्टारूप जो अनर्थ है उस अनर्थ से मुक्त हो सकता है। ये दोधी चिड़िया का महोत्सव का मोरलिटी है, सारांश है। तो जब रामकेली गांव में महाप्रभु आए थे उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए आए। इससे पहले उन्होंने बार बार अपना घर से भागने का कोशिश किया लेकिन किसी बार भी कृतकार्य नहीं हो पाया। हर बार उनको पकड़ के ला करके घर में डाल देते थे। उनका पिताजी उनको 8 व्यक्ति रखे थे, चौकीदार वॉचमैन जो सदा सर्वदा रघुनाथ दास गोस्वामी को नजरबंदी करके रखते थे। गृहबंदी होता है ना आजकल, नेता लोग गृहबंदी व नजरबंदी, उस प्रकार नजरबंदी करके रखे थे बाहर ना जा सके। तो इस प्रकार रखने के बाद उनका मन सदा सर्वदा महाप्रभु का चरण तल में निविष्ट है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी परमेश्वर लिखते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य अप्सरा सम पत्नी। ऐश्वर्य इंद्र फेल है, कितना धन संपत्ति है। इंद्र सम ऐश्वर्य अप्सरा सम पत्नी, जो पत्नी है अप्सरा सभी श्रेष्ठ है। लेकिन कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कृष्ण प्रेम बा चैतन्य प्रेम जिनका हृदय में जागृत हुआ है, भौतिक जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उसको आकर्षित करके रख सकता है। बाकी सब क्षणिक वैराग्य है, फल्गु वैराग्य है, वैराग्य का आभास भी बोलना दुष्कर है, क्योंकि सूर्य का आभास में तम होइलो दूर, तो वैराग्य आभास में भी सब दूरीभूत हो जाता है, तो आभास भी बोलना बेकार है। ये जो वैराग्य है नित्य चिदगत वैराग्य, और इस चिद वैराग्य बातचीत बल जिसका हृदय में आविर्भूत हुए हैं, उस व्यक्ति को इस जगत में किसी प्रकार बंधन से बांधा नहीं जा सकता है। अगर बंधन में बांध सकता था तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बांधा जा सकता था, कि उनका हृदय में जो चैतन्य प्रेम आविर्भूत हुए हैं, जगत का कोई भी वस्तु अच्छा नहीं लाएगा। बृहद भागवत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद जो गोप कुमार का प्रेम का वर्णन किए हैं वैकुंठ में जाकर के, मनोशिक्षा में रघुनाथ दास को विवृति में देते हैं, जो गोप कुमार जो वैकुंठ में पहुंच गया तब ये जो भौतिक जगत का जो सुख है, ये भौतिक जगत स्वर्ग सुख मुक्ति सुख सबको उल्टी जैसे लगने लगा। जो बीरज का परोपार में मुक्ति लोक है सिद्ध लोक, उनको भी उल्टी जैसे उल्टी कर कैसे बास मारता है, इस प्रकार बास मारने लगा वैकुंठ पहुंचने के बाद। तो वैकुंठ का जो जो सुख है बा जो सुखानंद अनुभव है, उस अनुभव का सामने इस जगत का बीरजा पार का भी जगत जो है, उस जगत का सुख भी तुच्छ है। एक सदा सर्वदा सुख का अनुभव, उस अनुभव इस प्रकार लग रहे, फिर भी उस वैकुंठ में गोप कुमार का सुख नहीं लगा, उनको भी वहां पर भी सिर दर्द होने लगा। अभी सोचो, क्योंकि उन्होंने क्या था, कृष्ण मंत्र में उपासक था, और उस कृष्ण मंत्र जब तो गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच जाता है तब तो उनका फुलस्टॉप नहीं होता है, तो जगत में वैकुंठ सुख भी तुच्छ हो जाता है। कृष्ण सुख को आगे मुक्ति सुख को अगर परार्ध करके गुणगित भी किया जाए तो भी वैकुंठ सुख प्राप्त तो नहीं होता है। तो इतना वैकुंठ सुख का वर्णन दिया गया है। और सौभाग्य की बात यह है, अरे एकमात्र लोभ मनुष्य जन्म में, और वो भी लोभ इस मर्त्यलोक में, ये भी ख्याल रखो। बाकी जो 14 भुवन का जो 13 भुवन है, उस लोक में अगर हमारा जन्म भी हो जाए किसी सौभाग्यवश, कि सुकृति के बिना नहीं होता है, तो उस लोक में भी हम हरिभक्ति नहीं कर सकते हैं। एकमात्र हरिभक्ति हमें अगर करना है तो इस पृथ्वी लोक, इस मर्त्य लोक, इस मरणशील जो लोक है, इस लोक में रह के हम कर सकते हैं। तो हमारा सौभाग्य यही है जो हमारा जन्म अभी इस लोक में, अभी मनुष्य रूप में हुआ है। तो इनका अगर सदुपयोग इस जगत का झंझट से अगर मुक्ति पाना चाहता है कोई व्यक्ति, वह अपने आप को मुक्त रखना चाहता है, तो उनका एकमात्र कर्तव्य होता है हरि कथा आलोचना करना और हरि कथा कीर्तन करना। दूसरा कोई भी आलोच्य विषय श्रवणीय विषय नहीं होना चाहिए। जगत अपना माया के द्वारा परिवर्तित तो होते रहेगा, संसार चलते रहेगा, उसको किसी ने भी कोई रुकावट नहीं कर सकता है। हम भी नहीं रोक सकते और आप भी नहीं रोक सकते हो, इनको जैसे चलना है चलते रहेगा। लेकिन इस जगत में रह करके हमारा नित्य जो है वस्तु, उस वस्तु को हमें प्राप्त अगर एक बार कर लिया तो हमें इस जगत में दोबारा इस चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। ये हमारे लिए सुखद वार्ता है और सुखद अनुभूति यह है जो हम इस चक्र में जुड़ चुके हैं। मुक्ति होने का जो उपाय का जो चक्र है, इस चक्र में हम जुड़ चुके हैं, अभी घूमते रह रहे हैं, हो कब हम पहुंचेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तेही रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के पास आए मिलने के लिए राम के लिए गांव में, तब महाप्रभु ने उपदेश दिया, स्थिर होया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पायलोक भव सिंधु कुल, अंतरे निष्ठा रखो बाज्य लोक व्यवहार, उचिरा कृष्ण तुम्हारे करिबेन उद्धार। काय मनोवाक्य रघुनाथ यहा आचरिलो। बार बार घर से भाग करके ये देखा के दिखावा करके क्या करोगे, चुपचाप रहो, जाके घर में रहो, चुपचाप घर में जाओ। ज्यादा वैराग्य देखने का आपको कोई जरूरी नहीं है। मरकट वैराग्य करो, लोग दिखाइया आपका ज्यादा वैराग्य, लोग क्यों दिखा रहे हो? वैराग्य हृदय का संपत्ति है, लोगों को दिखाने लायक नहीं है। हम लोग कुछ दिन पहले प्रहलाद महाराज का रो अजगर वृत्ति साधु का कथा सुना, कुछ दिन हो गया, शायद महीना भर भी नहीं हुआ, और श्रवण कर हम लोग क्या शिक्षा मिला। वो अजगर वृत्ति साधु क्या कहते हैं, बोले आप संभाषण का योग्य, इसलिए मैं आपसे संभाषण कर रहा हूं, नहीं तो मैं आपसे संभाषण करने वाला नहीं है। अगर किसी के पास वैराग्य संपत्ति है, वो बाहर प्रकाश करने का कोई जरूरी नहीं है। लोग जाने आप सबसे बड़ा विषयी है, लोगों को अपना वैराग्य कभी नहीं दिखाने का। चुपचाप भजन करके जाओ, वैराग्य को छिपा के रखो, जो जरूरत पड़ेगा वैराग्य अपना प्रकाशित होगा। फूल का खुशबू को भी छिपता नहीं है, और आतर डाल के अगर किसी पाता में डाला दिया जाए उसका खुशबू रुकता नहीं है, ये भी ख्याल रखो। जो फूल का खुशबू जो कभी छिपेगा नहीं, किसी से भी नहीं छिप सकता है, लेकिन अगर पात्र में अगर आतर डाल के खुशबू देने जाओगे कब तक देके जाओगे, वो सूख जाएगा, बास उब जाएगा। हृदय का वैराग्य कभी छिपने वाला नहीं है, वो यथा समय अपने आपको प्रस्फुटित अवश्य ही करेगा। तो वैराग्य संपत्ति है, इसको रुका नहीं जा सकता है। बोला आपको मरकट वैराग्य अभ्यास कर रहे हो, क्या जरूरी है आपको लोग को दिखा रहे हो? जब हम घर छोड़ना हमारा इतना पत्नी अच्छा नहीं लगता, शरीर अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसे इसका एक स्टोरी आता है, बहुत सुंदर स्टोरी आता है, कोई बुरा मत मानना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का समय का स्टोरी है। चैतन्य मठ में भक्ति ठाकुर विराजित है, वहां पर बाप भी भजन भक्त है, बेटा भी भक्त है, दोनों भक्त है, ऐसा अभक्त को दोनों मंदिर में जान के आए, दोनों भक्त है। लेकिन बाप और बेटा जो सामने में मिलते हैं तो दोनों कोई किसी से बात नहीं करता है, एक इधर एक उधर जाता है, दोनों का ऐसा वैराग्य है। आज जो भी रोड में आ जाता तो भी कुलाकुली बाप और बेटा, बोला पुत्र तुम्हें देख के बिना हम तो रह नहीं सकते, बाप आपको देख के हम रह नहीं सकता है। बोलते इस प्रकार बाप बेटा का वैराग्य करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे बाप तो बाप है ही है, बेटा तो बेटा है ही है, उसमें तुम सामने जो मिलोगे तो बात भी नहीं करोगे तो क्या जरूरी है तुम्हारा ऐसा बाहर जाके बात करने का। इसको बोलता है मरकट वैराग्य। इस मरकट वैराग्य का अध्ययन करने से कुछ होने वाला नहीं है। यथा योग्य विषय को जाना सकते, यहाँ बाप को बाप का सम्मान दिया करो, बेटा का बेटा का सम्मान लिया करो, फिनिश हो गया। तो भक्ति ठाकुर ने कहे जिस प्रकार वैराग्य क्या फायदा है, इसको बोलता है मरकट वैराग्य ना करो, लोग दिखाइया। मठ का अंदर ऐसा वैराग्य जब बाप बेटा में कोई किसी को पहचानता भी नहीं है, लेकिन बाहर जैसे निकालता है ऐसा ये हाल है। तो आपको इस प्रकार वैराग्य अभ्यास करने का जरूरी क्या है, क्या जरूरत पड़ गया आपको? आप कोई साधारण व्यक्ति है क्या? महापुरुष कहने का तात्पर्य यही है, घर में जाओ, धीरे धीरे लोग भवसिंधु का कुल प्राप्त हो सकता है। ज्यादा उतावली बनने का कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा वैराग्य दिखाने का कोई जरूरी नहीं है। कपट वैराग्य को अभ्यास मत क्या करो, गृहस्थ है तो गृहस्थ में रहकर के भजन करो, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रहकर भजन करो, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थी रहकर भजन करो, सन्यास है तो सन्यास में रहकर भजन करो। ओ समय होगा तो ही बोलेंगे। ते रघुनाथ दास गोस्वामी को उपलक्ष्य करके महाप्रभु जगत जीव को शिक्षा दिया, भजन करने का विधि किया है। तो रघुनाथ दास घर जाके में घर घर जाइया रघुनाथ यहा आचरिल, देखी पिता माता बहुत खुशी होइल। रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर घर में सब कुछ कार्य जितना जितना करना था अच्छी तरीके से निभाने लगा। इसी समय एक मुसलमान उनका विरोधी हो गया और जाके राजा को नालिश कर दिया, मुसलमान राजा को। और वो जब इनको बांधने के लिए तो बाप और जेठा भाग गया, रघुनाथ को पकड़ के लेके गया। रघुनाथ वहां गया और उजीर आकर के डांटने लगा, और जब भी उनको मारने के लिए जाता है तो मार नहीं पाता है रघुनाथ दास गोस्वामी को, और देख कर उनका चेहरा देख करके चुपचाप हो जाता है। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी उजीर को बोला, बोला देखो हमारा बाप और जेठा तुम तीनों भाई है, हम जिस पर बाप जेठा का बेटा हूं उस पर आपका भी बेटा मैं हूं, तो आप मुझे ताड़न ये डांटना शोभा नहीं देता है। यहां सुनी से पीरे मन दबाई लो, जैसे वाक्य को रघुनाथ से सुना वो दाढ़ी बह करके उनको आंख में आंसू आने लगा। बोला बाप एकमात्र आप ही हमारा मदद कर सकते हो, देखो तुम्हारा पिता जितना पैसा लेता हमको भी कुछ देने के लिए बोलो ना। बोला ठीक है। तो उसी दिन उसको रघुनाथ कुमार से छुड़ा दिया और उन बाप जेठासारे उजीर से तीनों को मिला करके कुछ फैसला कर दिया। ये है रघुनाथ दास गोस्वामी। एक दिन जब नित्यानंद प्रभु सपार्षद पानीहाटी गांव में आए हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको कहा अपना पिताजी को, जे मैं नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए जाना चाहता हूं तो आप कृपा करके मुझे आदेश जाने के लिए अनुमति दीजिए। तो उनका पिताजी ने सोचा जे बार बार किसी व्यक्ति को रोकना अच्छा नहीं, बोला जाओ घूम के आ जाओ, साथ में कुछ पैसा कुछ धन दौलत साथ में दो चार ब्राह्मण को, बोला जाओ ये साथ में सब जाओ और नित्यानंद प्रभु को दर्शन करके आओ। तो नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में जो एक बड़ का पेड़ है वहां पर एक चबूतरा बांधा हुआ है, उस चबूतरा में बांव पाव के नीचे रखकर दक्षिण पद को बांव पाव के ऊपर रखकर बैठा हुआ है, पीछे राघव पंडित छत्र धारण किए हुए सब लोग पार्षद लोग जो है सब पार्षद अपना अपना सेवा में मग्न है और नित्यानंद प्रभु अपना नील धोती पहन करके इस प्रकार बैठा हुआ जैसे राज राजेश्वर कोई तांबूल दे रहा है, कोई छाता पकड़ के बैठा है, कोई चामर डुला रहा है। दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनको देखा तो दूर से उनका प्रभाव देखकर उनको दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद उनका सेवक ने कहा रघुनाथ ने आपको प्रणाम कर रहा है। किसी व्यक्ति को इस संसार से अगर मुक्त होना अपना अनर्थ निवृत्ति करना चाहता है, कोई व्यक्ति व्यक्ति चाहो और हम है कोई अगर अपना अनर्थ निवृत्ति करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु का चरण में वंदना करना पड़ेगा। आर कबे निताय चांदेर कोरोना होइबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे। देखो नरोत्तम दास ठाकुर भजन का है गौरांग, हम लोग तो कितना कीर्तन और मृदंग कितना अच्छा गा लेते हैं, इसका मर्म क्या हम लोग अंदर प्रविष्ट नहीं होता है। गौरांगो बोलिते हवे गौरांगो बोलिते नयन बवे नीर, गौरांगो शब्द उच्चारण करते आंख में आंसू आना चाहिए। आता है क्या, हम देखते हैं हमारा करताल ठीक से बाज रही नहीं है कि मृदंग का ताल बराबर हो रहा है कि हारमोनी बराबर चल नहीं रहा है, हमारा धान वो तीनों में जाता है लेकिन हमारा वो धान महाप्रभु को जो लीला में नहीं जाता है। गौरांग शब्द को उच्चारण करते मतलब क्या होना चाहिए, पूरा शिष्य अपना माइंड में आना चाहिए। बोला पूरा शिष्य माइंड में आ गया कैसे, कंप्यूटर में कैसे आता है, और कंप्यूटर बनाने वाला आदमी का ब्रेन नहीं है ना, तो कंप्यूटर से अपना ब्रेन ताकतवर है कि नहीं है, तो पूरा शिष्य क्यों नहीं आएगा, आराम से आएगा। महाप्रभु का लीला गौरांग, तो गौरांग शब्द उच्चारण करने से महाप्रभु का समस्त लीला का अनुभूति होना चाहिए बा मन में शरण होना चाहिए। हरि हरि बोलिते नयन बवे नीर, आर कबे निताय चंदेर करुणा होइबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे। नित्यानंद प्रभु का कृपा से संसार वासना तुच्छ होता है, दूसरा कोई तुच्छ नहीं करता है। गौरांग महाप्रभु संसार वासना तुच्छ नहीं करता है, अगर करता था तो रघुनाथ दास को समय को रिटर्न नहीं भेजते थे, वो बोल सकता चलो हमारा साथ स्वयं भगवान तो है ही है, चलो देखता तुम्हारा बाप जेठा क्या करेगा। क्या भगवान किसी का मन चेंज नहीं कर सकता है, नहीं, नहीं गौर सुंदर ने काम नहीं किया, नित्यानंद प्रभु ने काम कर दिया। जिसको भी बोलो ना और एक दूसरा भजन निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ा है हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई, दृढ़ करी धर निताय पाए। ये राधा कृष्ण का सेवा अगर प्राप्त करना है तो नित्यानंद प्रभु का कृपा एकांत आवश्यक है। रूप सनातन राम के लिए मैं आया था महाप्रभु से मिलने के लिए, बोला नित्यानंद के पास जाओ। महाप्रभु क्या बोला, ये नित्यानंद और अद्वैत दोनों के पास जाओ, ये दोनों कृपा करेगा तो मिल सकता है। जीव गोस्वामी वो भी नित्यानंद प्रभु के पास आए और नित्यानंद प्रभु से पूरा नवद्वीप परिक्रमा कराया तो जीव को भी वृंदावन मिला। तो जो भी कोई व्यक्ति वृंदावन निवास करना चाहते हैं उनके लिए नित्यानंद का चरण पकड़ के रखना चाहिए। हानिताय हाय गौर बोले ये नित्यानंद प्रभु है। तो ये नित्यानंद प्रभु के पास जब पहुंचा उन्होंने बोला चोरा चोरा है तो देने कुछ चोर, तुम बहुत बड़ा चोर हो, तुम इतना दिन कहां भाग के बैठा था, ला उसको बांध के लेकर आओ, आज उसको हम दंड देंगे। तो दो चार सेवक गया और सेवक जाकर के रघुनाथ को पकड़ा और पकड़ के नित्यानंद प्रभु का चरण तल में गिरा दिया और नित्यानंद प्रभु कृपा पर अवसर के अपना चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर में अर्पण किया। अभी देखो, अभी इसमें कुछ रस विचार में जाएंगे। नित्यानंद प्रभु बलदेव तत्व और रघुनाथ दास गोस्वामी मंजरी तत्व, एक स्त्री है और एक पुरुष है। तो नित्यानंद प्रभु का चरण एक किसी का, मतलब क्या बोला, कहा जाएगा किसी स्त्री का सिर में तो गिर नहीं सकता है। तो नित्यानंद प्रभु वास्तव में है कौन? राधा रानी क्या सिस्टर नित्यानंद में प्रविष्ट हुए हैं, अनुराधा। तो वहां पर उस भाव में जाकर के नित्यानंद माथे में चरण पकड़ दिया। नित्यानंद प्रभु ने उस जगह में उस भाव में वशीभूत होकर के दास गोस्वामी के सिर में चरण अर्पण किया। तो जब तक कृपा नहीं होता है तब तक उस लीला में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता है। तो यही नित्यानंद प्रभु कृपा करके बोला आज से तुम्हारा समय, बोला आज तुम्हारा दंड है। क्या दंड है? जो हमारे जितना सारे लोग देखा जाता ना, जितना सारे हमारे पार्षद लोग के, सबको दही चिड़ा खिलाओ, दूसरा कुछ नहीं, सबको दही चिड़ा खिलाओ आज। तो नित्यानंद प्रभु खुश हो गया, तुरंत गांव भेज दिया, बोला जाओ जितना दही आज चूड़ा सब लेके आओ, गांव भेज दिया, दो बार चार बार मन जो साथ में जा, बोले सब उठा के लेके आओ वहां से आज। बोले जितना सब आवाज हो गया, आवाज महोत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, तो सब व्यक्ति महोत्सव में फिस्ट मतलब कुछ बेचने के लिए आया, कोई दही चूड़ा सब लोग आया बेचने के लिए। रघुनाथ दास को उस समय जितना सब बेचने के लिए लाया था सबको खरीद कर लिया। अरे बोला आप लोग भी यहां से मत जाया करो, आप लोग भी खाओ। सब दही आज चूड़ा ला करके नित्यानंद प्रभु का सामने दिया। तो नित्यानंद गोरीदास पंडित ऐसे बहुत सारे उनका भक्त लोग थे, सब ने मिल करके उस गंगा का किनारे में दही को मिट्टी का दो दो कुंडा लिया, एक कुंडा में आरोवा चिड़िया और एक कुंडा में क्या बोलते उसको सिद्ध चिड़िया। चिड़िया दो प्रकार का होता है, एक जिस धान को बॉयल नहीं किया जाता उसमें से निकाल उसको बोलता है आरोवा चिड़िया, और जिसको बॉयल करके निकाला जाता है उसको बोलता है सिद्ध चूड़ा। ये दो प्रकार का पोहा रख करके दोनों हांडी जो है उसमें भिगाया गया और सबको वैष्णव जितना लोग था सबको दो दो हांडी दे दिया गया, उसमें मिक्स किया गया, एक में दूध और एक में दही, चापाकोला बातासा और खंड संदेश ये सब मिक्स करके, इलायची पाउडर और लौंग, ये सब बहुत बढ़िया सुस्वादु करके बनाया गया और जितना सारे वैष्णव था सबको दिया। और जो वैष्णव को बैठने के लिए जाएगा ना वो गंगा में उतार के खाने लगा, सब गंगा में उतार के लाइन लगा करके और उतार करके सब दो दो हांडी, और हांडी गंगा में रखता है, गंगा में हांडी डूबा नहीं, हांडी ऊपर तैर रहा है। आई बोलो कोई चीज में अगर भारी वस्तु रहेगा हांडी को बोलते खाली नहीं है, खाली हांडी तो तैरेगा, उसमें दही चूड़ा तो भरा हुआ है तो हांडी को तो डूब जाना चाहिए, लेकिन हांडी अपना बराबर पानी के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है, हिलता भी नहीं है। ये विचित्र कार्य हो रहा है नित्यानंद प्रभु का इसमें। तो सबको सबको जो दो दो हांडी दिया गया है, तो महाप्रभु अपने पास नित्यानंद प्रभु अपने पास चार हांडी रखा। तो बोला रुको, अभी महाप्रभु को नीलाचल से बुलाया गया, नित्यानंद प्रभु ध्यान किया, ध्यान कर से महाप्रभु नीलाचल से आया। अब इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? कदम्ब पुष्प का खुशबू पूरा उस जगह एरिया भर गया। कोई कोई जिसका महासौभाग्यवान व्यक्ति है वो महाप्रभु को दर्शन किया, आज जो किसी ने उसका खुशबू मिला महाप्रभु का, जो कदम्ब पुष्प का हार का खुशबू। तो नित्यानंद प्रभु बोला चिंता मत करो, महाप्रभु यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने महाप्रभु का साथ में लेकर के सबका हांडी से दो दो महाप्रभु को खिलाने लगा। तो महाप्रभु सबका जितना जितना वैष्णव लोग था सबका हांडी का चिड़िया और दही भक्षण किया। फिर महाप्रभु ने यह नित्यानंद प्रभु ने सबको हरि बोल दिया और हरि बोल उच्चारण करके सब वैष्णव को भोजन करने का आदेश दिया। तो सब ने अच्छी तरीके से भोजन किया और भोजन करने के बाद सबको बीड़ी दिया। बीड़ी मतलब क्या जानते हैं? तांबूल। हमारे लिए तांबूल क्या है? लौंग और इलायची। बाकी तांबूल हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, लौंग और इलायची हम स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार भोजन करने के बाद राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु का जो उच्छिष्ट था वो रघुनाथ को दिया। बोला आज से तुम्हारा बंधन काट गया, नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद किया, बोले तुम्हारा बंधन काट जाएगा, आज से तुम्हारा गृहस्थ का जो बंधन है काट गया और तुम नीलाचल में जाकर के महाप्रभु के पास पहुंचोगे, महाप्रभु तुमको स्वरूप के हाथ में सौंपेगा, तुम्हारा नाम होगा स्वरूप का रघु। स्वरूप रघु बोला खाती हुई लो जा, यही वैष्णव सेवा का इस प्रकार फलश्रुति है। इस प्रकार वैष्णव का सेवा किया जाता है तो क्या होता है, अपना अनर्थ निवृत्ति होता है। ये वैष्णव सेवा कोई सामान्य वस्तु नहीं है, अनर्थ निवृत्ति करना अगर कोई चाहता है तो वैष्णव का सेवा किया करे। जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा, उनको जाकर सर्विस करना चाहिए, फिनिश हो गया, वो भी वैष्णव सेवा है। मुंह से मीठा वचन से वैष्णव सेवा होता है, उनका प्रशंसा करना ये भी वैष्णव सेवा है। जो जैसे जैसे कायो वाक्यो मनो बोचो धिया, ये चार प्रकार का भगवत सेवा का विधि दिया गया है। इस पर कोई प्रकार से हम भगवान का वैष्णव का सेवा कर सकते हैं। तो संध्या जब राघव पंडित उस जगह में आया, बोला आप यहाँ भोजन कर रहे थे, हमारे घर में कब खाओगे, बोले चिंता मत करो आपका घर में हम शाम को खाएंगे। तो यहाँ को कोई भक्त ज्यादा खाते, बोले कितना खाता है रे बाबा, और वहाँ सब पेट भर के खाता है, मैंने अकाउंट पूरिया भोजन, ये नहीं यहाँ तक नहीं यहाँ तक दबा के खाता है सब। तो महाप्रभु जब राघव पंडित के घर में शाम को सब भोजन हुआ, सबका नित्य गीत कीर्तन हुआ और रघुनाथ ने महाप्रभु को 11 तोला सोना और कुछ 100 स्वर्ण मुद्रा, 100 मुद्रा 11 तोला सोना नित्यानंद प्रभु को दिया, और बाकी जितना सब वैष्णव लोग थे सबको किसी जो इस प्रकार वैष्णव है, किसी को 1 तोला, किसी को 2 तोला, किसी को 2.5 तोला, इस प्रकार मुद्रा और सोना देकर के विदाई मांगा। तो राघव पंडित उनको कुछ प्रसाद, ठाकुर जी को दर्शन कराया, राघव पंडित घर में गौर नित्यानंद विग्रह है, उनको दर्शन कराया, कुछ प्रसाद दिया और वो प्रसाद लेकर के नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद लेकर के रघुनाथ घर में आए। ये रघुनाथ का दंड पानी महोत्सव पानी हाटे में हुआ था। बाकी स्टोरी तो रघुनाथ के बहुत सारे हैं। तो हमारा आज का वक्तव्य था दही चूड़ा उत्सव। तो चूड़ा उत्सव का ही सारमर्म है, इनका इस उत्सव में जितना चूड़ा खाओगे उतना नित्यानंद प्रभु का कृपा समझ के खाते रहो, कौन कुछ नहीं करेगा, पेट भर के खाओ दही चूड़ा, तो खाने से क्या होगा, नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला। क्यों आज का दिन जो उत्सव है, इस उत्सव में नित्यानंद प्रभु और गौर सुंदर का कृपा मिश्रित है, तो हमारा भी अनर्थ निवृत्ति इसमें होना चाहिए। हरे कृष्ण, टाइम बहुत हो गया। अरे दो दो बाल्टी रखा हुआ है, प्रश्नों करके क्या करोगे, खा ले जाके।